यन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिपुरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञान तिम्रांधानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचारि गुरुभ्यो नमः। सकलकुलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र परनाम मोक्ष शास्त्र नाम देयम्। अस्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनोनुसारमासाद श्रीमत् उमा स्वामी आचार्य देवैर्विरचितं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। नौवा अध्याय के कुछ सूत्र बचे हुए थे उनको अपन समझ लेते हैं, और साथ ही दसवें अध्याय में तो थोड़े ही शिव सूत्र हैं उनको भी अपन कर लेते हैं। शुक्ल ध्यान के बारे में आचार्य भगवंत कहते हैं कि वास्तव में तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आत्मा का ही, धर्म ध्यान में तो चिंतन है और आत्मा में जो लीनता है वह शुक्ल ध्यान, उसमें एकाग्रता बहुत अधिक होती है और विशुद्धि की वजह से और कर्मों की निर्जरा भी होती है, कर्मों का क्षय भी होता है, हमारी आत्मा निर्मल और धवल हो जाती है, इसलिए उस ध्यान को शुक्ल ध्यान कहा गया है। शुक्ल ध्यान सभी को नहीं हो पाता, जिनको 11 अंग 14 पूर्व के जो पाठी हैं उनको ही शुक्ल ध्यान होगा। द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा से नहीं है यह कथन, भाव शुद्ध की अपेक्षा से है। जैसे शिवभूति नाम के मुनि महाराज को द्रव्य शुद्ध तो अत्यंत अल्प था, लेकिन विशुद्धि के माध्यम से उन्होंने आत्मा को शरीर से भिन्न अनुभव कर लिया, सो इसलिए उनको भाव शुद्ध उपलब्ध हो गया, और भाव शुद्ध के विशुद्धि के कारण उनको बीज बुद्धि रिद्धि होने से द्रव्य शुद्ध भी उपलब्ध हो गया। तो मुख्यतः यहां पर द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा भाव शुद्ध की है कि जो 11 अंग 14 पूर्व का पाठी है, भाव शुद्ध से युक्त है, वही इस ध्यान को, इतनी एकाग्रता तो उसी को आ पाएगी। इसलिए सूत्र में लिखा कि शुक्ले चाद्य पूर्वया पिदा, जो पूर्व के पाठी हैं उनके लिए दो शुक्ल ध्यान प्रारंभ के होते हैं। चार प्रकार का शुक्ल ध्यान है वो आगे जाकर के और उसके चारों के नाम कहेंगे, लेकिन पहले कह दिया कि शुरू के दो तो जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हैं उनको होंगे, और परे केवलिना बाकी के जो दो शुक्ल ध्यान हैं वो तो केवली भगवान के होंगे। चारों ध्यानों के शुक्ल ध्यान के क्या नाम हैं? पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरत क्रिया निवर्तिनी। उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला कोई 11 अंग 14 पूर्व का धारी मनुष्य अब शुद्ध ज्ञानी है तो शुद्ध ज्ञान के बल पर किसी भी एक वस्तु का चिंतन करता है, या तो परमाणु को, पुद्गल को या आत्मद्रव्य को ही अपना चिंतन का विषय बना लेता शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, और शुद्ध ज्ञान के आधार पर किसी एक द्रव्य रूप पदार्थ पर से दूसरे पदार्थ पर, एक द्रव्य रूप एक गुण से दूसरे गुण पर, यानी गुण से गुणांतर और पर्याय से पर्यायांतर दूसरी पर्याय पर परिवर्तित होता रहता है, वो ज्ञान धारा संक्रमित होती रहती है, चिंतन फिर भी, ध्यान फिर भी बना रहता है। इसी प्रकार वह पृथक वितर्क ध्यान करता पृथक में तीनों योगों में परिवर्तन होता रहता है, श्रुति के माध्यम से वह द्रव्यों में भी उनकी पर्यायों में कभी गुण का चिंतन करता है, इस प्रकार अपना विषय बनाकर उस पर ही एकाग्र हो जाता है। जैसा कि द्रव संग्रह में लिखा कि निरी व्यक्ति हवे जदा साहू, वैसे तो पंच परमेश्वरी का स्मरण करना चाहिए, लेकिन अगर कोई निष्प्रही है वो किसी भी चीज का चिंतन करे तो राग द्वेष से रहित होकर के वीतराग भाव से चिंतन करता है तो हर्जा नहीं है भाई, लेकिन हर एक कोई पंच परमेश्वरी के अलावा किसी चीज का चिंतन करे तो वह वीतराग ताखों उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले पंच परमेश्वरी के गुण का चिंतन करने के लिए उपदेश दिया। ऐसा ही पृथक वितर्क ध्यान में होता है। त्रयेक योग काय योगा योगानाम, इन ध्यानों में क्रम से पृथक वितर्क वाला तो तीनों योग के माध्यम से इस ध्यान को परिवर्तित करता रहता है, लेकिन एकत्व वितर्क में तो किसी तीन में से एक योग के आश्रित होकर के इस ध्यान में लीन होता है। और काय योगी और अयोगी संयोग केवली तो सिर्फ काय योग के द्वारा ही तृतीय शुक्ल ध्यान को संपन्न करते हैं, और अयोगी जो है वो भी इस शुक्ल ध्यान को संपन्न करते हैं 14वें गुण स्थान में, और फिर दोनों शुक्ल ध्यान के फल स्वरूप वो सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते, गुण स्थान अतीत अवस्था प्राप्त हो जाती। एक आश्रय सवितर्क विचारे, जो परिपूर्ण श्रुत ज्ञान के धारी हैं उसके आश्रित रहने वाले प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान हैं। पहले के दो आश्रय वाले कैसे होते, सवितर्क और सविचार। वितर्क अर्थात श्रुत और सविचार, अलग इसका अर्थ दिया हुआ है कि आगे जाकर के कहेंगे अविचारम द्वितीयम। दूसरा जो पृथक वितर्क के बाद का जो एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है उसमें तो अर्थ व्यंजन और योग का परिवर्तन नहीं होता, यही उसका अविचार है। विचार का अर्थ आगे दिया हुआ है कि वितर्क श्रुतम और विचारोर्थ व्यंजन संक्रांति, अर्थ से अर्थांतर, व्यंजन से व्यंजनांतर, यानी पर्याय से पर्यायांतर, इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है अर्थ में, व्यंजन में और योग में, ये विचार कहलाता है। तो पहले वाले जो दो शुक्ल ध्यान हैं, एकत्व वितर्क वो पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क, इन दोनों में इस प्रकार का संक्रमण होता रहता है और शुद्ध के द्वारा वो होते हैं। अविचारम द्वितीयम, लेकिन दूसरा जो शुक्ल ध्यान है उसमें तो ऐसा नहीं होगा। इसमें जो पहले दे दिया है उसमें तो सविचार विचार से युक्त है, अर्थात परिवर्तन से युक्त है, वो पहले में ही लगाना। हालांकि दोनों ध्यानों में शुक्ल आपके श्रुत ज्ञान आवश्यक है, लेकिन सविचार तो पहला ही ध्यान रहेगा, दूसरे ध्यान की अवस्था में फिर परिवर्तन इत्यादि नहीं होगा, दोनों में इस तरह से लगाना। अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति क्या है, जब कोई जीव क्षीण कषाय गुण स्थान को प्राप्त करके वितर्क यानी श्रुत, तो श्रुत के आधार पर किसी एक द्रव का या एक पर्याय का चिंतन करता है, तो ऐसा करते समय वो जिस द्रव्य या पर्याय या शब्द या योग का आलंबन लेता है उसको बदलता नहीं है, तो ये कहलाएगा अविचार। ऐसा दूसरे शुक्ल ध्यान में स्थिति ध्यान करने वाले ध्याता की बन जाती है। इस प्रकार से अपन तो अगर ज्यादा समझ में नहीं आवे, हमने समझा पाए मान लो, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो वर्तमान में होत नहीं है, तो अपने समझ में आएगा कैसे कि होत का है इनमें, ये तो जैसा आचार्यों ने लिखा है सो उस हिसाब से अपन कोशिश करते समझने की कि ऐसा होता होगा। वास्तव में तो शुक्ल ध्यान में एकाग्रता धर्म ध्यान की अपेक्षा बहुत अधिक है, विशुद्धि बहुत अधिक है, और आत्मज्ञान के द्वारा वो आत्मा में ही लीन होने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के उस विशुद्धि के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। ये दोनों शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान में कारण बनते हैं, ऐसा अपन ध्यान में रखें। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विवृत क्रिया निवृत्ति में सर्वज्ञ देव जो है योग का निरोध करते हुए सब योगों का अभाव करके वादर काय योग का भी निरोध कर देते हैं, सूक्ष्म काय योग में स्थित हो करके इस ध्यान को करते हैं। अब बताओ केवली भगवान को ध्यान की क्या आवश्यकता, अपने मन में ऐसा प्रश्न आ सकता, वे तो आत्म ध्यान में लीन ही है केवल ध्यान के उपरांत, उनको और ध्यान की क्या आवश्यकता। तो कहते हैं ये तो दो ध्यान उनके उपचार से हैं, क्योंकि इन ध्यान के का फल गुण स्थानातीत अवस्था यह तो प्रकट करना है। सो कैसे हो गई फोकट में बैठे बैठे, नहीं भाई, उन्होंने इन शुक्ल ध्यानों का आलंबन लिया जिससे वो गुणास्थापना तीन तीत अवस्था को या सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हुए। तो अकेले आत्म प्रदेशों में सूक्ष्म परिवर्तन परिस्पंदन शेष रह जाता है, सूक्ष्म काय योग की अवस्था में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ये ध्यान करते हैं, और विपरीत क्रिया निवर्ती में तो काय योग के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का जो अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन है या परिस्पंदन है वह भी शेष नहीं रहता और आत्मा अत्यंत निष्कंप हो जाती है, वो विपरीत क्रिया निवर्तिनी, ऐसा चौथा शुक्ल ध्यान है। इन दोनों ध्यानों के माध्यम से सिर्फ जो कर्म बंधे हुए हैं आत्मा के साथ उनकी निर्जराई होती है, जिसको परिसातन क्रिया कहते हैं। आगमन तो होता नहीं फिर कर्मों का इस योग के निरोध कर देने पर, अभी तक तो साता वेदनी कर्म का आश्रय भले ही एक समय के लिए स्थिति अनुभाग वाला हो रहा था, लेकिन जैसे ही योग का निरोध करके ये दोनों ध्यान धारण करते हैं केवली भगवान, तो उनके लिए फिर आश्रय बंद हो जाता है और मात्र उनके निर्जराही होती चली जाती है। इस प्रकार 14वीं पुस्तक में इनका बहुत डिटेल में इसको अपन समझ सकते हैं कि कैसे होता होगा। कार्य समझ में आता है, करते क्या होंगे वो तो जब करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शम कोप शांत मोह क्षीण क्षपक क्षीण मोह जना क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा, संख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती चली जाती है इस क्रम से। सम्यक दृष्टि होवे तो उस सम्यक दृष्टि से पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की निर्जरा, असंख्यात प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी यानी असंख्यात कर्मों की निर्जरा उसके द्वारा होती रहती। क्यों? क्योंकि उसके अप्रत्याख्यान कषाय भी चली गई, जिस माध्यम से उसको निर्जरा का रेशियो बढ़ गया। उसके बाद जो विरत जो महाव्रति है छठे सातवें गुण स्थान में है, मुनि महाराज जी हैं, उनके लिए और अधिक कर्मों की निर्जरा होगी, और अनंतानुबंधी की जिसने विसंयोजना कही है और उपशम श्रेणी में के सम्मुख पहुंच गया है विसंयोजना करके, तो उसके लिए और अधिक विशुद्धि के माध्यम से आपके गुण श्रेणी निर्जरा होगी। लेकिन कोई अगर चौथे गुण स्थान में भी दर्शन मोहिनी की सपना करे तो उसको भी विशुद्धि अधिक होती है सपना करने वाले को, और जो उपशम करेगा तो उसको उससे और अधिक, लेकिन ये उपशम उपशम सम्यक दर्शन के पहले होने वाला उपशम नहीं है, ये जो है द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन की अवस्था में जो उपशम करता है, उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए उस अवस्था में ये उपशामक को और अधिक निर्जरा होगी, और जिसका उपशांत मोह ग्यारहवां गुण स्थान प्राप्त हो गया उसके लिए और असंख्यात गुणी निर्जरा, और जिसने दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी की छपना करके और फिर बारहवें गुण स्थान में पहुंच गया है, ऐसा कोई आठवें नौवें दसवें गुण स्थान का शपक है उसकी तो निर्जरा असंख्यात गुण श्रेणी होगी, और उससे भी असंख्यात गुण श्रेणी जो छपक उसमें छपक श्रेणी में चढ़ करके बारहवें गुण स्थान को प्राप्त हो गया है, क्षीण मोह है उसकी होगी, और जो जिनेन्द्र भगवान है सयोग केवली अयोग केवली इन तीनों इन दोनों अवस्थाओं में तो उनके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। ये दस स्थान क्रम क्रम से कषाय की मंदता जितनी होती चली जाती है उतनी निर्जरा का रेशियो अनुपात बढ़ता चला जाता है। इससे समझने की बात यह है, सूत्र का अर्थ तो सबको समझा जा सकता है, लेकिन मैं क्या करूं दिन भर में जिससे कि मेरे कषाय ना हो, सो ज्यादा से ज्यादा निर्जरा होती रहे, ऐसे निमित्तों से मैं दूर रहूं, ऐसी बातों से दूर रहूं। अपन तो एक बात में और चार बातें कह करके कषाय दूसरे की बढ़ाएंगे और अपनी बढ़ाएंगे, और ये मालूम है कि कषाय बढ़ने से कर्म बंद होगा, निर्जरा तो होगी नहीं, जबकि अपन सूत्र में पढ़ रहे हैं कि जितनी कषाय कम होती जाएंगी उतनी विशुद्धि होगी और निर्जरा कम होगी। मंद कषाय का नाम ही विशुद्धि है और कषाय की तीव्रता का नाम ही संक्लेश है, सो जितना बन सके कषाय की अपन को मंदता धारण करनी चाहिए। इस सूत्र से यही शिक्षा अपने को मिलती है। पुलाक वशकुश कुशील निर्ग्रंथा निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक ये पांच प्रकार के निर्ग्रंथ साधु होते हैं। दिगंबर मुनि महाराज पांच प्रकार के होते हैं। कैसे? पुलाक तो जैसे कि प्याल होता है भूसा, उसके समान इनकी उपमा दी, यानी सार भाग से रहत होता जैसे भूसा, ऐसे ही ये भी उत्तर गुणों का ठीक से पालन नहीं करते और मूल गुणों में भी इनके द्वारा विराधना हो जाती है, सो अपन इनको दोषी ना माने। छठे सातवें गुण स्थान में भावलिंगी साधु हो सकते हैं ये सब, ऐसा देख करके अपन बाह्य में अंतरंग के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते कि क्या स्थिति अंतरंग की है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि वर्तमान में कोई दोष भी करे तो उसको दोषी नहीं मानो, नहीं भाई, जो पुलाक निर्ग्रंथ मुनि हैं वे तो मजबूरी वश कभी एकाद महाव्रत में अगर दोष लग जाता है तो उनकी इच्छा से नहीं लगा है, उनकी मजबूरी में लगा, और उत्तर गुणों का तो वो पालन नहीं कर पाते जैसा पूर्ण रूप से करना चाहिए, तो तब भी उनका छठा सातवां गुण स्थान रहता, इतनी विशुद्धि रहती, उनके अंदर दोष करने की भावना नहीं है, वो तो मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा के साथ आरूढ़ हैं, लेकिन क्या करें, कर्मों के उदय से और शरीर की अशक्तता के कारण उनके दोष लग जाते हैं, उन्हें पुलाक नाम का मुनि कहते हैं। और बकुश, बकुश का मतलब होता है बहुत चित्र विचित्र आचरण, उनकी क्रियाएं सब चित्र विचित्र होती हैं, व्रतों का लेकिन पूरी तरह से पालन करते हैं, शरीर और उपकरण को सजाने में लगे रहते, हमारी पीछी अच्छी रहे, हमारा कमंडल साफ सुथरा, उसी को रोज पेंट करवा रहे, अच्छो सजा के रखो हैं, इसमें लगे रहते, और साथ में रिद्धि और यश ख्याति की बहुत इच्छा जिनको रहती है, अपने परिवार जनों के प्रति बहुत आशक्त और मोह युक्त बने रहते हैं, फिर भी छठा सातवां गुण स्थान है, ये ध्यान रखना। अपने अंदर निंदा का भाव जैसे ही उत्पन्न होने लगे तो फौरन संभाल लेना अपने को कि नहीं भैया छठे सातवें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, उनके बाह्य आचरण से हम उनके अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि को नहीं तोल सकते। यहां पर भले ही उनका शरीर और उपकरण के प्रति बहुत आसक्ति का भाव है, रिद्धि और यश की आकांक्षा है, परिवारजनों से आसक्ति तो है, लेकिन अपने रत्नत्रय की और व्रतों की वे उनको पालन करने में बहुत सजग हैं, उनका ठीक से पालन करते हैं, पर फिर भी उनका आचरण चित्र विचित्र होने से वकुश कहलाते। वो कुशील से तो अपन को सुनने में ही अच्छा नहीं लगता कि पांच पापों में से एक पाप है कुशील। देखो तो कैसे महाराज जी हैं जो कि उनका नाम कुशील रखा गया। भैया कुशील का मतलब है जिनको मात्र संजुलन कषाय का उदय है। सो कषाय कुशील है और प्रतिसेवना कुशील, और कषाय कुशील में से प्रतिसेवना कुशील तो मूल गुण और उत्तर गुण को अच्छे से पालन करते हैं, पर परिग्रह के प्रति उनकी आसक्ति थोड़ी बहुत बनी रहती है। उत्तर गुणों की विराधना भी कर देते हैं, प्रतिसेवना हो जाती, इसलिए प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। और अन्य कषायों पर तो जिनने विजय प्राप्त कर ली, मात्र संजुरन कषाय शेष रह गई है। ऐसे श्रेणी में विद्यमान सातवें गुण स्थान से ऊपर उपशम श्रेणी छपक श्रेणी में जो मुनि महाराज चढ़े हैं उनका नाम है कषाय कुशील। ये नहीं समझना कि जो वर्तमान के अवस्था में अपन को देखने में आ जाती है शिथिलता, सो अपन उससे कंपेयर करके और उस शिथिलता का सम्मान करने लगे कि देखो वो मैं तो लिखी है तत्वार सूत्र में, ऐसो ऐसो हो सकत तो वर्तमान में भी करन दो। ऐसा नहीं है इसका भाव। ये तो उन मुनि महाराज जी की चर्चा है जो कि श्रेणी में चढ़े हुए हैं। आज वर्तमान में तो सातवें गुण स्थान से ऊपर बहुत विशुद्धि कोई हो तो जा नहीं सकता, सातवें तक ही जा सकते हैं गुण स्थान तक। और जिनके राग द्वेष का तो अभाव हो गया, अंतर मुहूर्त के उपरांत ही जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे मुनि महाराज को निर्ग्रंथ कहते हैं। और स्नातक केवली भगवान को, संयोग केवली और अयोग केवली इन दोनों को स्नातक ऐसा पद दिया हुआ है। इस प्रकार से ये पांच निर्ग्रंथ के ही भेद हैं, जिनको पढ़ते समय जरा सावधानी रखना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी अपन गड़बड़ा जाते हैं। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या, इतने प्रकार से अपन विचार कर सकते हैं इन निर्ग्रंथों का। संयम की अपेक्षा, श्रुत ज्ञान की अपेक्षा, प्रतिसेवना की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, लेशा की अपेक्षा, उनके उत्पाद कहां तक उत्पन्न होंगे इस अपेक्षा से, और उनके स्थान की अपेक्षा कितने संयम लब्धि स्थान उनके होंगे, इन सब की अपेक्षा इन निर्ग्रंथों में अलग अलग सब में पाए जाने से भेद रहेगा, पर हैं तो सब निर्ग्रंथ ही। जैसे कि पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनके सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र दो प्रकार का होता है। कषाय कुशील के तो यथाखात्र चारित्र के अलावा चार प्रकार का चारित्र पाया जाता है, और शेष जो दो निर्ग्रंथ हैं स्नातक और निर्ग्रंथ, इनके तो यथा क्या संयम होता है। संयम की अपेक्षा से अपन ऐसा जान सकते हैं। शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा देखें तो उत्कृष्ट से पुलाक बकुश और कुशील अभिन्न दस पूर्व के धारी होते हैं, और कषाय कुशील और निर्ग्रंथ तो 14 पूर्व के धारी होते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होंगे कषाय कुशील। और जघन्य से अगर देखें तो पुलाक जो है आचार वस्तु यानी अष्ट प्रवचन मातृका पांच समिति तीन गुप्ती इनके ही जानकार होते हैं। बकुश कुशील और निर्ग्रंथ आठ प्रवचन मातृका जघन्य से उनके धारी होते हैं, और स्नातक तो सर्वज्ञ होने से उनके तो श्रुत ज्ञान इत्यादि होता ही नहीं, केवल ज्ञान उनके उत्पन्न ही हो गया। इस अपेक्षा से अपन विचार करें। प्रतिसेवना की अपेक्षा पुलाक जो है पांचों महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग इन छह में से किसी एक व्रत का किसी दूसरे के दबाव में या बलपूर्वक विराधना कर देते हैं। उनकी इच्छा स्वयं की व्रतों को भंग करने की नहीं है, लेकिन मजबूरी में प्राणों की रक्षा के लिए या कि किसी ने उनके लिए मजबूर कर दिया तो उस व्रत की विराधना उनके द्वारा हो जाती है। बकुश में तो उपकरण बकुश अच्छे अच्छे उपकरण रखते हैं और उनकी सास संभाल करते रहते हैं, और शरीर बकुश भी होते हैं जिससे कि वो अपने शरीर के ही श्रृंगार में अधिक समय बिताते हैं, और प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों की तो यथावत रक्षा करते हैं पर उत्तर गुणों की विराधना कर देते हैं, और बाकी जो निर्गंथ और स्नातक हैं वे तो मूल और उत्तर गुण दोनों की ही विराधना नहीं करते हैं, वे तो प्रतिसेवना से रहित होते हैं। तीर्थ की अपेक्षा से देखा जाए तो सब तीर्थंकरों के काल में पांचों प्रकार के मुनि महाराज होते हैं, और लिंग की अपेक्षा से देखा जाए तो पांचों भाव लिंगी होते हैं। द्रव्य लिंग की अपेक्षा से सबके अलग अलग होगा, जितनी जिसकी अवगाहना होगी पिची कमंडल जैसा होगा। ये कहा गया यहां पर द्रव्यलिंग, यहां पर द्रव्यलिंग का अर्थ और भावलिंग का जो अपन अध्यात्म की अपेक्षा लेते हैं वैसा नहीं लेना। यहां पर तो द्रव्यलिंग जो है वो बाहर का जो अवगाहना उनके शरीर का रूप आकृति इत्यादि है, पिची कमंडली अलग अलग जैसे लिए हुए हैं वैसा ही उनका द्रव्यलिंग होगा, और भावलिंग की अपेक्षा से सभी निर्ग्रंथ भावलिंगी होते हैं, छठे सातवें गुण स्थान में विराजते हैं। लेश्या की अपेक्षा से देखें तो पुलाक के तो तीन शुभ लेश्याएं होती हैं, और बुकुश और प्रतिसेवना कुशील के छह लेश्याएं हो सकती, सडपी लेश्या। क्यों? क्योंकि उपकरण और शरीर के प्रति आसक्ति होने से थोड़ा सा उनको आर्त ध्यान हो जाता है, छह लेश्याएं उनके हो सकती। और कषाय कुशील के तो मात्र अंत की चार लेश्याएं होती हैं, उसमें भी सो सूक्ष्म सांप्राय कषाय कुशील हैं और शेष निर्ग्रंथ हैं, उनके तो एकमात्र शुक्ल लेश्या होती है। अयोग केवली सयोग केवली के तो जो निर्ग्रंथ स्नातक हैं उनके तो लेश्या से वो रहते हैं। इस प्रकार से लेश्या का वर्णन हुआ। उपपाद की अपेक्षा देखा जाए तो पुलाक नाम के मुनि महाराज का उपपाद बार में स्वर्ग तक उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों में होता है। बकुश और प्रतिसेवना कुशील का उत्पाद आरण अच्युत सोलवे स्वर्ग तक संभव है। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ का तो उत्पाद सर्वार्थ सिद्धि तक जाकर के उत्पन्न होते हैं, यह उनका उत्कृष्ट उत्पत्ति का विधान है। और जघन्य से तो सभी सौधर्म स्वर्ग तक जाएंगे ही, और स्नातक तो नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा अपन उपपाद के माध्यम से पांचों के बारे में जान सकते हैं। संयम स्थान सबका एक सा नहीं रहता, असंख्यात हैं। अगर छठे सातवें गुण स्थान में तो सबके संयम लब्धि स्थान अलग अलग होंगे। इस तरह से अपन को पांचों भेदों के बारे में विचार भिन्न भिन्न माध्यम से करना चाहिए, कर सकते हैं। दसवें अध्याय में पहला सूत्र कहते कि मोक्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाच केवलम। मोक्ष तत्व की चर्चा कर रहे आचार्य महाराज कि कैसी अवस्था बनती है जब कर्मों से मुक्त होकर के जीव सिद्धत्व का अनुभव करता है। मोह का क्षय हो जाने से सबसे पहले जाता है मोह। तो दसवें गुण स्थान के अंत में, और अगर शबक श्रेणी में चढ़े हैं तो बारहवें गुण स्थान में शीर्ण कसाय सीधे दसवें से बारहवें में पहुंच जाते। सो दसवें का अंतिम समय और बारहवें का पहला समय, इन दोनों को जैसा जिस नए की अपेक्षा आपको कहना हो, दसवें के अंतिम समय में मुंह का क्षय किया या कि बारहवें के पहले समय में शीर्ण कसाए हुए, जैसा आपको कहना हो, दोनों नयों की अपेक्षा कह सकते। पर दसवें गुण स्थान तक मुंह विद्यमान रहता है। मुंह के क्षय होने पर उसके बाद फिर एक साथ तीन कर्मों का घातीय कर्मों का क्षय होता, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, ये तीन कर्म नष्ट हो जाते बारहवें गुण स्थान में, और जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और केवली भगवान अरंत अवस्था में वो उपदेश इत्यादि के लिए सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए एक सूत्र लिख दिया कि कैसे चार घातीय कर्मों का नष्ट करके जीव केवल ज्ञान उपलब्ध करता है। वो बंद हेतु भाव निद्राभ्याम कृष्ण कर्म विमोक्षो मोक्षा, और अभी तो सिर्फ चार घातीय कर्मों का नाश करके अरंत अवस्था को प्राप्त किया है, लेकिन बंध के जितने हेतु हैं उन सब का हेतुओं का अभाव करके और निर्जरा के द्वारा सब कर्मों का क्षय करके जो अवस्था प्राप्त होती है वही अवस्था मोक्ष की है, वही उपादेय है। अपन को भी प्राप्त करने की भावना रखनी चाहिए। सो बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा, ये दो चीजें हैं। अपन तो भव्यत्व नाम चा औपशमिक आदि जो भाव हैं और जो भव्यत्व भाव है उसका भी अभाव हो जाता है जब मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। पांच प्रकार के भाव कहे थे, उन पांच में से जो पारिणामिक भाव है उसमें जीवत्व का तो अभाव होगा नहीं। एकमात्र मोक्ष की अवस्था में जीवत्व भाव शेष रहेगा। भव्य जीव को ही मोक्ष होगा, अभव्य को तो होगा नहीं, लेकिन भव्य और अभव्य दोनों संज्ञाओं से परे हो जाते हैं सिद्ध भगवान। और औपशमिक इत्यादि भाव भी जो कर्मों के उपशम से उदय से क्षय उपशम से क्षय से होते हैं वो सब वहां पर कहने में नहीं आएंगे, नहीं रहेंगे। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्ध दिव्या, सिद्ध अवस्था में तो किस चीज का अभाव नहीं होता, चाहे एक सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये गुण तो आत्मा की सिद्ध अवस्था में विद्यमान रहते हैं, इन सब का अभाव नहीं होता। लेकिन जब किसी जीव को समस्त कर्मों से रहित अवस्था प्राप्त होती है तो यहीं पर प्राप्त होगी, उसके बाद जीव एक समय के अंदर सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाएगा। तो तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात्, कहां तक जाएंगे, लोक के अंत तक, जहां तक कि धर्म द्रव विद्यमान है। समस्त कर्मों का वियोग हो जाने पर जीव लोक के अंत भाग तक जाता है। क्यों जाता है, पूर्व प्रयोगात असंगत्वात बंधच्छेदात तथा गति परिणामात च, चार बातें कह दी और इसके लिए आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभुक देरण्य बीज बदग्नि शिखा वच्च, चार इसके उदाहरण भी दे दिए। जैसे कुम्हार अपना चाक चलाता है तेजी से घड़ा बनाने के लिए और फिर बाद में हाथ छोड़ देता है, फिर भी चाक पूर्व प्रयोग की वजह से घूमता रहता है, ऐसे ही पूर्व प्रयोगात कुम्हार के चाक की तरह यह जीव सिद्ध अवस्था में एक समय में सिद्धालय में विराजमान हो जाता कर्म से मुक्त होने से अभ्यास के कारण। असंगत्वाद, जैसे कि तूमड़ी के ऊपर अगर कीचड़ लगा करके उसको जल में डाल दिया जाए तो पहले तो जाती दिखाई पड़ती है नीचे डूबती जल में, लेकिन जैसे जैसे कीचड़ हटता चला जाता है, मिट्टी हटती चली जाती है, तुमड़ी धीरे धीरे जल से अपने आप, कोई लाता नहीं है, अपने आप ऊपर चली आती है सतह पर। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे आत्मा से कर्म मुक्त होते जाते हैं आत्मा सहज ही ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। तो ऊर्ध्वगमन सिद्ध करने के लिए आचार्य भगवंतों ने तुमड़ी का भी उदाहरण दिया। और असंगत्वात कहा, अर्थात जो भी कृत्य कालिमा कर्मों की थी उसके रहित हो जाने से है। और एरंड बीज वद बंधत छेदात, एरंड का बीज होता है और जैसे ही वो फट जाता है तो उसमें से बच्चे लोग कभी कोई पकड़ लेते ना एक के फूक मार दी कि अब जाओ फिर अयो काल। वो क्या है? वो जीव नहीं है। उसमें जो काला काला सा दिख रहा है और रुई चारों तरफ हल्की बहुत हल्की सी उसके लगी हुई है, वो एरंड का बीज है। वह वृक्ष अपने बीजों को हवा के माध्यम से दूर दूर तक भेज देता है। जहां पर वो बीज मिट्टी का संयोग पाते हैं वहीं पर वृक्ष हो जाते हैं। लेकिन कब? जबकि वो फल फटता है तब उसमें से बीज निकल करके और जैसे ऊपर की तरफ हवा के प्रवाह में बहने लगते हैं, इसी प्रकार से बंधक छेदात वो बंधक छेदात ऐसे ही आत्मा में से जो कर्म का बंध है उसका छेद होने पर क्षय होने पर जीव भी एरंड बीज के समान ऊर्ध्वगमन करता है और स्वभावत तथा गति परिणामाच अग्नि सिखावत। जैसे कि अपन अग्नि जलावे तो उसकी सिखा नीचे की तरफ नहीं जाती, ऊपर की तरफ ही बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से जैसे अग्नि की सिखा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, परिणाम है, इसी प्रकार से जो मुक्त जीव हैं कर्मों से मुक्त होकर के वे भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव से चले जाते हैं। धर्मास्ति काया भावात। भैया आत्मा में तो अनंत शक्ति है, लोक के अग्रभाग तक ही जाकर के काय रुक गए भगवान, आगे भी जा सकता था वो जीव जो कि मुक्त हो गया है। कहते नहीं, धर्मास्ति काया भावात, निमित्त का भी काम है। आगे अलोकाकाश में तो धर्म द्रव्य का धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए बिना धर्मास्तिकाय के तो जीव और पुद्गल जो कि गमन करने में धर्मास्तिकाय सहयोगी है, जब वही नहीं रहा तो उनका गमन कैसे हो पाएगा। तो इसलिए लोक के अग्रभाग तक ही धर्मास्तिकाय है, सो वहां पर वहां तक उनका गमन होता है। यहां पर भी अपन सिद्धों के बारे में जैसे निर्ग्रंथ मुनि महाराज के बारे में जो छठे सातवें उन स्थान में विराजमान है या श्रेणी में चढ़ गए हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उन सब की चर्चा करी थी। ऐसे ही अपन सिद्ध भगवान की भी क्षेत्र काल लिंग गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संकल्प बहुत्वता साध्या, ऐसे ही सिद्ध अवस्था का भी इन सब के हिसाब से अपन वर्णन समझ सकते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से तो वर्तमान में कहां है सिद्ध भगवान? सिद्ध क्षेत्र में है। या कि अपने मुक्ति कहां होती भैया? न सिद्ध क्षेत्र पे होती है, न ढाई द्वीप में होती है, ये तो व्यवहार से कथन है। सिद्धि तो समस्त कर्मों से रहित होकर के अपने आत्मा में ही होती है। सो आत्म प्रदेशों में सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है, सो क्षेत्र तो आत्म प्रदेश ही हुए, या कि आकाश के प्रदेश जहां से कि सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। अतीत की अपेक्षा से देखें तो कहां से सिद्ध हुए? मनुष्य लोक से सिद्ध हुए, ये अतीत की अपेक्षा से आएगा। वर्तमान में तो वे सिद्ध क्षेत्र में ही हैं, सिद्ध हुए। काल की अपेक्षा से वर्तमान में तो कर्म मुक्त होने का क्षण ही सिद्धत्व का काल है। जिस समय जीव कर्मों से मुक्त होता है वही उसके सिद्ध अवस्था का समय है। लेकिन अतीत काल की अपेक्षा से देखें तो उत्सर्पणी अवसर्पणी में जन्म लेने वाले जीव सिद्ध होते हैं। और या ये कहें कि उत्सर्पणी अवसर्पणी में भी जब सुषमा दुष्मा काल होता है उसके अंत भाग में और दुष्मा सुषमा काल में जो जन्मते हैं वही जीव सिद्ध होते हैं। ये क्यों कहा तीसरे काल में? क्योंकि ऋषभ देव भगवान तो तीसरे काल में ही जन्म लेकर के तीसरे में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, तो भैया चौथे काल में जन्मे हुए जीव ही सिद्ध होंगे, ये नहीं रहा। ऐसा अपवाद भी मिलता है कि तीसरे काल में जन्म लेकर के और मुक्ति को प्राप्त हो गए, इसलिए कह सकते हैं अतीत की अपेक्षा से सुषमा दुष्मा काल और दुष्मा सुषमा ऐसे तीसरे चौथे काल में उनका सिद्धपना प्राप्त हो गया। गति की अपेक्षा से देखा जाए तो सब सिद्ध जीवों की कौन सी गति है? सिद्ध गति। लेकिन अतीत की अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्ध कैसे मनते? मनुष्य गति के माध्यम से तो उनके मनुष्य गति कहलाएगी। अतीत की अपेक्षा से, लिंग की अपेक्षा से देखा जाए तो वर्तमान में सब सिद्ध समस्त वेदों से रहित हैं, अपगत वेदी हैं। लेकिन भूतकाल की अपेक्षा से, भाववेद की अपेक्षा देखें तो तीनों वेद को धारण करने वाले जीव सिद्ध हो सकते भाववेद की अपेक्षा। लेकिन द्रववेद की अपेक्षा से देखा जाए तो मात्र निर्ग्रंथ लिंग पुरुष वेद को धारण करने वाले जीव ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। और तीर्थ की अपेक्षा से तो तीर्थंकर के सद्भाव में भी सिद्ध जीव होते हैं। और तीर्थंकर के काल में, जब तीर्थंकर का निर्वाण हो गया, उसके बाद भी दूसरे तीर्थंकर के पैदा होने तक, जब तक उन तीर्थंकर का काल है, उस काल में भी उत्पन्न हो सकते, तो तीर्थंकर के सामने भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते। तो तीर्थंकर के सद्भाव में भी सिद्ध होने वाले जीव हैं और अभाव में भी सिद्ध होने वाले जीव की अपेक्षा से तीर्थ का कथन करना चाहिए। स्वयं तीर्थंकर होकर के भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और बिना तीर्थंकर हुए भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते, ऐसा अर्थ भी ले सकते। और चारित्र की अपेक्षा से वर्तमान में तो सिद्ध किसी चारित्र वाले नहीं है, पांच प्रकार के चारित्र में से तो चारित्रवान नहीं है क्या? है तो भैया, लेकिन जो आपने पांच वेद करे हैं उनमें से उनके कोई भी चारित्र में उनको नहीं डाल सकेंगे अपन। ये नहीं कहा जा सकता कि किस चारित्र वाले हैं पांच में से। अतीत की अपेक्षा से देखा जाए तो जो सिद्ध होते हैं सब यथा क्या चारित्र को धारण करते हैं। प्रत्येक बुद्ध भी होते हैं और बोधित बुद्ध भी होते हैं, स्वतः ही मोक्ष मार्ग का बोध पा करके, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो लेते हैं, और या फिर दूसरे के द्वारा समझाए जाने पर बोध को प्राप्त होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो बोधित बुद्ध कहलाते। ज्ञान की अपेक्षा से तो जितने केवल ज्ञानी हैं वो ही सब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते। अतीत की अपेक्षा से देखा जाए तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान को धारण करने वाले कोई भी जीव होंगे तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। अवगाहना की अपेक्षा से देखा जाए तो जिनका चरम शरीर है उनके, उनसे कुछ थोड़ी सी अवगाहना कम होगी और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वर्तमान में। अतीत की अपेक्षा से देखा जाए तो जघन्य से तो 3.5 हाथ और उत्कृष्ट से 5.25 धनुष तक की अवगाहना वाले जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते। लेकिन जो सिद्ध भगवान है वर्तमान में, उनकी अवगाहना कितनी है ये पूछे कोई अगर, तो जो अंतिम अवगाहना थी उससे कुछ कम, यही उनकी अवगाहना कहलाएगी। और अंतर की अपेक्षा से तो सांतर भी हैं और निरंतर भी हैं। एक जीव के सिद्ध होने के बाद दूसरे समय में जब कोई सिद्ध होता है तो उसे निरंतर सिद्ध कहते हैं, अर्थात निरंतर वो क्रम टूटा नहीं है, चल रहा है, तो निरंतर सिद्ध हैं। और जब कोई लगातार सिद्ध ना होकर के कुछ अंतराल में सिद्ध होते हैं तब उसे सांतर सिद्ध कहते हैं। संख्या की अपेक्षा से देखें तो एक समय में कम से कम एक जीव तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता और अधिक से अधिक 108 जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। क्यों? 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाने का विधान है। सो 6 महीना तक अगर अंतराल पड़ा तो 6 महीने तक कोई जीव नहीं गया मोक्ष को, और 8 समय में 608 जीव, सो प्रत्येक समय में कम से कम 108 जीव मोक्ष को प्राप्त हुए। इस तरह से 608 जीव मोक्ष को प्राप्त हुए 8 समय में बन जाता है, 6 महीने का गैप हो गया इस वजह से। अल्प बहुत की अपेक्षा देखें तो वैसे सिद्ध होने वाले जीवों का सिद्ध क्षेत्र में अल्प बहुत बनेगा नहीं, लेकिन अतीत की अपेक्षा से देखें तो जन्म सिद्ध और संहरण सिद्ध ऐसे दोनों में अल्प बहुत बन जाता है। जिस क्षेत्र में जन्मते हैं उसी क्षेत्र में सिद्ध हो गए तो वो जन्म सिद्ध कहलाएंगे, और अन्य क्षेत्र में जन्मे हैं और जीवों का अपहरण करके और किसी दूसरे क्षेत्र में ले जा करके पटक दिया और उस क्षेत्र से सिद्धत्व को प्राप्त हो गए तो वे सब संहरण सिद्ध कहलाएंगे। संहरण सिद्ध वाले जीव तो कम है और जन्म सिद्ध उससे संख्यात गुने हैं। इसी प्रकार ऊर्ध लोक सिद्ध तो सबसे कम है, अधोलोक में उससे असंख्यात गुने हैं, उत्तीयग लोक में और असंख्यात गुने हैं। समुद्र से सिद्ध होने वाले जीव बहुत कम हैं, दीप से सिद्ध उससे असंख्यात गुने हैं। इसी तरह काल की अपेक्षा भी विचार किया जा सकता है। इस प्रकार इन सब बातों के द्वारा सिद्धत्व का या सिद्ध पर्याय का अपन विचार कर सकते हैं। उपाधि अपने लिए मोक्ष तत्व है, सो उसे कैसे प्राप्त किया जाए ये भावना इसको पढ़ने के बाद कर लेना चाहिए। भाई अकेले इसको पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, मेरे लिए आशा और बंध से बचना चाहिए और संवर निजरा निरंतर करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और मोक्ष मेरे लिए उपाधेय है, मेरा लक्ष्य है, ऐसा निरंतर ध्यान बना रहे और सात तत्वों के प्रति श्रद्धान अपना बना रहे। इसके लिए अपन ने इसका विशेष रूप से विवेचन किया, वर्णन किया। इस वर्णन को पढ़ने से एक बात और है कि देखो इतना सब ज्ञान बिना सर्वज्ञता के तो सामान्य जीव के हो ही नहीं सकता है। सो सब बातें जो लिखी गई हैं वह केवल ज्ञान में जानी हुई हैं और हमारे लिए उपकार करके और आचार्य भगवंतों ने कही हैं, तो केवल ही भगवान के प्रति अपने मन में अपार श्रद्धा उत्पन्न होती है। हमारे अरंत भगवान तो सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी होते हैं, ऐसा अपने भीतर श्रद्धान जागृत होवे तो भैया इस सब के अध्ययन का महत्व है। और अगर अध्ययन करके जाके लगे कि हम तो बहुत बना थे, तुम्हें तो कछु बनते ही नहीं है, तुम्हें तो सूत्र जी तक नहीं आउत, मैं तुम्हें सूत्र जी को अर्थ मालूम आए, तो भैया इससे कुछ अपना प्रयोजन नहीं सिद्ध होने वाला। प्रयोजन तो उसका सिद्ध होगा जब समय सार जी का अध्ययन 1982 में आचार्य महाराज ने हम लोगों को कराया। सो पूरा समय सार का अध्ययन होने के बाद कहने लगे कि समझ में आया। हमने कहा महाराज समझ में तो आया, हम तो हुआ समझ रहे थे कि बड़ा कठिन ग्रंथ है, हम कैसे पढ़ें। आपने बड़े सरलता से उसको समझा दिया, हमें तो थोड़ी सी बात समझ में आई। कहने क्या समझ में आया? हमने कहा आपने इतने सारे ग्रंथ पढ़ाए, हमें तो एक ही चीज समझ में आई कि जितना बन सके उतना राग द्वेष मुंह में करना चाहिए, बस। सो आचार्य श्री ने हंस करके कहा कि ये तो क्षयोपशम का उपयोग इसी के लिए है कि अपन ज्ञानवान है तो उसका अध्ययन करें, काहे के लिए? ज्ञान बढ़ाने के लिए अकेले नहीं, अपनी विद्वत्ता साबित करने के लिए नहीं, राग द्वेष कम करने के लिए, मोह कम करने के लिए अपन इस चीज का अध्ययन करें। ये अपन ध्यान में रख करके और इस चीज को निरंतर जितना स्वरूप समय है उतना अभ्यास करते रहें। आचार्य विभा विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरु मिथ्या तम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, भानु शिव कानी है। अनुभव ताए वेखो, जीवों के जताए वेखो, काहू न सताए वेखो, भव्य हुरयानी है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तो।